दी प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत आपको सुना रहा हूं रिस्का सदम की रिपोर्ट। तेलंगाना चुनाव से पहले निजाम पर फिल्म बनाने की मची होड़, तीन प्रोड्यूसर में एक भाजपा नेता भी शामिल। तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS और भारतीय जनता पार्टी भाजपा में बढ़ते कंपटीशन के बीच कम से कम तीन फिल्म निर्माता पूर्व शासक निजाम हैदराबाद और उनकी निजी मिलिशिया रजाकार पर फिल्म बनाने में जुटे हैं। तीन निर्माताओं में एक फिल्म कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल हैं तो दूसरे तेलंगाना भाजपा के एक नेता। इस बीच दी प्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा सदस्य विजेंद्र प्रसाद भी इसी विषय पर एक अलग स्क्रिप्ट लिखने में व्यस्त हैं। यह सब ऐसे समय चल रहा है जब निजाम शासन और रजाकारों के अत्याचार तेलंगाना के सियासी सरगर्मियों के बीच गहन चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM का कहीं ना कहीं रजाकारों से सीधे रिश्ता रहा है। मिलिशिया का नेतृत्व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM नेता कासिम रिजवी ने किया था और यही संगठन बाद में AIMIM में बदल गया, जिसका नेतृत्व अब असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। रिजवी ने असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वहीद ओवैसी को बागडोर सौंपी थी, जो कि पहले संगठन से जुड़े नहीं थे। आज़ादी के समय तकरीबन सभी 500 रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम को अपनी रियासत का भारत में विलय करने को कहा, लेकिन शासक ने इनकार कर दिया। इसके बजाय निजाम ने 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। हालांकि निजाम को दुनिया के सबसे धनी लोगों में शुमार किया जाता था, लेकिन उनकी संपत्ति का एक हिस्सा किसानों से अत्यधिक कर वसूले जाने का नतीजा था, जिन्हें उनके जमींदार बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। इसी अवधि में रजाकार आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे और लोगों को आतंकित करते थे। उन्होंने किसान आंदोलन और भारतीय संघ में विलय के विचार को दबाने में भी अहम भूमिका निभाई। हैदराबाद के देश में विलय पर जारी वार्ता असफल होने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन पोलो के तहत हस्तक्षेप किया, जिसके बाद ही 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो पाया। भाजपा अब तेलंगाना पर पूरा ध्यान भी केंद्रित कर रही है, जहां पिछले 2 सालों में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतने और ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद वह TRS के साथ सीधे मुकाबले की स्थिति में नजर आ रही है। कश्मीर फाइल्स के निर्माताओं में से एक अभिषेक अग्रवाल ने दी प्रिंट को बताया कि स्क्रिप्ट पर ज़्यादातर काम हो चुका है। उन्होंने कहा, 2 साल से अधिक समय से हम इस पर शोध करने में लगे थे, चीज़ें आगे बढ़ गई हैं और उन्हें बस अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। शोध में कम से कम 11 सदस्य शामिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें सही ढंग से आकार लें, जो हुआ उसे ठीक ठाक चित्रित किया जाए और सच्चाई को वैसे ही बताया जाए जैसी वह थी, उसमें कोई शुगर कोटिंग ना हो। साथ ही जोड़ा कि इस साल किसी समय इस बारे में घोषणा की जा सकती है। निर्माता ने कहा कि उनकी कश्मीर फाइल्स की टीम इस प्रोजेक्ट पर भी काम करेगी। सूत्रों ने दी प्रिंट को बताया कि हैदराबाद के ही रहने वाले अभिषेक अग्रवाल के केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी, तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय और दिल्ली के कुछ अन्य शीर्ष नेताओं के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। हालांकि अग्रवाल का कहना है कि उनकी फिल्म का किसी भी राजनीतिक दल या उसके प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक यह पूरी तरह एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है। इस बीच तेलंगाना भाजपा के एक नेता भी इसी विषय पर एक फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर उक्त नेता ने बताया कि तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय ने 29 अगस्त को शूटिंग को हरी झंडी दिखाई थी। नेता ने कहा कि इंटरटेनमेंट और क्रिएशन से जुड़ी मेरी कंपनी पहले ही फिल्म एसोसिएशन बॉडी में फिल्म के 3 टाइटल रजिस्टर्ड करा चुकी है। हमने बाकायदा भुगतान करके फिल्म टाइटल रजिस्टर्ड कराए हैं, इसलिए कोई और उनका उपयोग नहीं कर सकता। ये रजाकार, रजाकार फाइल्स और निजाम डायरीज हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बजट लगभग 30 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हाल ही में हैदराबाद आने पर इसकी जानकारी दी गई थी। यह एक अखिल भारतीय फिल्म होगी जो कई भाषाओं में रिलीज की जाएगी। मई में रजाकारों पर एक फिल्म के बारे में बंदी संजय की घोषणा के बाद प्रसाद के भी इसी तरह के विषय पर एक पटकथा लिखने की चर्चा हुई थी। बंदी संजय ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जाने माने पटकथा लेखक को फिल्म की पटकथा लिखनी होगी। दी प्रिंट ने जब प्रसाद से संपर्क साधा तो उन्होंने यह पुष्टि तो की कि वह पूर्ववर्ती हैदराबाद रियासत की मुक्ति और भारतीय संघ में इसके विलय की पृष्ठभूमि के संबंध में एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन इसके लिए किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े होने की बात से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अभी लिख रहा हूँ और इसमें समय लगेगा, मैं एक मानवीय संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुस्लिम और हिंदू दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं और उन्हें शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहना चाहिए। स्क्रिप्ट तैयार होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। गत 17 सितंबर यानी 74 साल पहले की उस तारीख जिस दिन हैदराबाद भारत संघ का हिस्सा बना था को शहर में टीआरएस और भाजपा के बीच एक शक्ति प्रदर्शन नज़र आया। भाजपा ने जहां 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया, वहीं के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस सरकार ने इसे तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। हैदराबाद में मुक्ति दिवस समारोह का हिस्सा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि AIMIM के दबाव की वजह से ही TRS आधिकारिक तौर पर 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के तौर पर स्वीकारने को तैयार नहीं है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया था और यहां तक कि KCR और शाह से भी ऐसा ही करने का अनुरोध किया था। कई इतिहासकारों ने इस बात को रेखांकित किया है कि कैसे ऑपरेशन पोलो एक त्रासद याद है, खासकर मुसलमानों के लिए। सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ऑपरेशन के दौरान करीब 27,000 से 40,000 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय सैनिक कैसे कथित तौर पर असंग मुसलमानों के खिलाफ लूट, बलात्कार और हत्या की घटनाओं में शामिल थे। भाजपा पिछले सप्ताह इस अवसर को पूरी तौर पर एक जश्न की तरह मनाने में जुट गई थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए साल भर चलने वाले समारोह की भी घोषणा की है। भाजपा के पूर्व विधान परिषद सदस्य MLC रामचंद्र राव ने कहा, भाजपा आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी प्रोडक्शन या ऐसी किसी फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर ऐसी कोई फिल्म रिलीज होती है तो पार्टी इसे प्रमोट करेगी ताकि ये अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि इतिहास क्या था। दी प्रिंट के इस अंक को सुनने के लिए धन्यवाद। एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।